हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हमें लगा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए मॉम। वैसे भी मैं इस राक्षस की जान लेना ही नहीं बल्कि इसका घमंड भी तोड़ना चाहती हूँ। तो अगर इसके लिए इसकी शक्तियाँ इसके साथ होंगी और मैं इसकी जान लूँगी, तब इस राक्षस की मौत के साथ साथ इसका घमंड भी टूटेगा। ऐसा कहकर तराना ने झटपट अपनी माँ तारापरी का हाथ पकड़ लिया और उस कक्ष से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते ही उसने अपनी जादुई शक्तियों से उस कक्ष को इस तरह लॉक कर दिया कि राक्षस की कोई आवाज़ परीलोक में नहीं पहुँच सकती थी और ना ही वो किसी को अपने वश में कर पाता। तब तारा ने तराना को समझाने की कोशिश की, वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें इस तरह उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन उस वक्त तराना तेज में आ गई थी और बोली, नहीं माँ, वैसे भी पिताजी ने सिखाया है कि कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, और अभी तो वो अर्धमूर्छित अवस्था में है। जब तक वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों के साथ मुझसे लड़ने के लिए नहीं आ जाता, तब तक मैं उसकी जान नहीं लूंगी। ऐसा कहकर तराना वहां से निकलकर सीधा रानी माँ के पास आ गई और वहां एक गोल घेरा बनाकर कठोर तप में बैठ गई। तब तारा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी और सोचने लगी कि अचानक इसे क्या हुआ है और वो इस तरह तप में क्यों बैठ गई है। तभी तराना परी ने तप में बैठकर अपने पिता अमन सिंह राठौर को देखना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसे अपने पिता काली शक्तियों के महागुरु की कैद में दिखाई देने लगे, क्योंकि तराना जब से परीलोक में आई थी तब से उसे बार बार ऐसा लग रहा था मानो उसके पिता पर कोई विपत्ति आई है। इसलिए उसने तप में बैठकर इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया था। तराना ने गुस्से से अपनी आंखें खोल दी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, काली शक्तियों का महागुरु इस तरह से मेरे पिता को अगवा नहीं कर सकता है। तभी तारा उसकी ओर देखकर बोली, क्या बात तराना, तुम क्या कह रही हो, कौन कैसे अगवा नहीं कर सकता। तभी तराना ने सीधा अपनी माँ तारापरी से कह दिया कि काली शक्तियों के महागुरु ने उसके पिता अमन सिंह राठौर को अगवा कर लिया है। जैसे ही तारापरी ने ये बात सुनी, अचानक उसकी आंखें मोतियों से भर गईं। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी इसी वक्त वापस पृथ्वीलोक जाना होगा और अमन को बचाना होगा। लेकिन तभी रानी माँ उसकी ओर देखकर बोली, तुम भूल रही हो बेटी, तुम अब किसी भी कीमत पर पृथ्वीलोक नहीं जा सकती हो, क्योंकि अगर तुम पृथ्वीलोक चली गईं तो कुलगुरु पूरी तरह से नाराज़ हो जाएंगे और वो तुम्हें अपने गुस्से की आग से भस्म कर देंगे। तभी तराना ने तारा की ओर देखते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा कहकर एक बार फिर तराना तप में बैठ गई और उसने सीधा अपने दादा महाराज से संपर्क करना शुरू कर दिया। दादा महाराज को जब इस बात का पता चला कि अमन इस वक्त काली शक्तियों के महागुरु के कब्जे में है, तो उनका भी गुस्से से बुरा हाल हो गया था। तभी तराना ने अपनी जादुई शक्तियों से एक ऐसा शस्त्र तैयार किया जो आसानी से काली शक्तियों के महागुरु से उसके पिता को छुड़ा सकता था, और वो शस्त्र उसने अपने दादा महाराज के पास भेज दिया। उसके दादा महाराज ने जल्दी ही करिश्मा और अमन को अपने पास बुलाकर अमरेंद्र जी को सारी बातें समझाते हुए अमन को बचाने के लिए अमरेंद्र जी के हाथों में वो शस्त्र थमा दिया। करिश्मा पूरी तरह से हैरान थी और बोली, लेकिन हम अमरेंद्र जी की जगह तराना बेटी को भी तो भेज सकते हैं। अभी तक अमरेंद्र और करिश्मा को इस बात का दूर दूर तक एहसास नहीं था कि तारा और तराना पहले ही परीलोक जा चुकी हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। दादा महाराज ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि इस वक्त अमन को बचाना ज्यादा जरूरी था। जल्दी ही अमरेंद्र जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ अमन को कैद करके रखा हुआ था। अमरेंद्र जी ने जल्दी ही अपनी शक्ति और साथ ही साथ तराना की भेजी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सब पर हमला करना शुरू कर दिया। वो उस जगह पहुंचे जहां अमन मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। जल्दी ही उन्होंने वो शक्तिशाली शस्त्र जो तराना ने भेजा था अमन के पास भेज दिया और अमन की आंखें तुरंत खुल गईं। अमन के हाथ में तराना का भेजा हुआ शस्त्र आते ही उसकी शक्तियां चार गुनी बढ़ गईं। अमन ने जल्दी ही सभी काले बड़े बड़े सांपों का मुकाबला करना शुरू कर दिया जो उसे अगवा करके लाए थे, और फिर उसने सबका मुकाबला करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में काली शक्तियों के महागुरु के सभी शस्त्रों को अमन और अमरेंद्र जी ने मिलकर मार गिराया और वो सब काला धुआं बनकर उठ चुके थे। काली शक्तियों का महागुरु अमन की इतनी शक्तियां देखकर काफी हद तक गुस्से से भर चुका था और जल्दी ही वो वहां से गायब हो चुका था, क्योंकि अगर वो उस वक्त वहां रहता तो अमन आसानी से उसका भी नामोनिशान मिटा सकता था, तो इस वजह से काली शक्तियों के महागुरु को गायब होना पड़ा था। वो सोचने लगा था, भले ही अमन ने ये जंग जीत ली हो, लेकिन 21 सालों के बाद ये जंग सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो आसानी से जिन अंश को मार डालेंगे और काली शक्तियों का महागुरु उनकी नफरत को हवा देगा, इसलिए उसका जिंदा रहना जरूरी है। और वो अंश कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित और प्रेमा का बेटा युवराज था।